कृपया श्री गुरु नमो महावतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरस्तुते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकान्वये सदानन्दे कृष्णाय कृष्ण प्रजंतमते समेतनो विलासायात्री सन्मयतयाबलस्ताचर्मे कृतामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नारायणमस्ते चैतन्योत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयन् गुरुदेव लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद कृष्ण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की असीम कृपा से चैतन्य महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु की कृपा से और राधा विनोद बिहारी जी की विशेष अनुकंपा से हमारे बंसल परिवार जी के हृदय में ये भावना आई कि वैसे तो यहाँ पर सारा वर्ष भागवत चलता है, उसी का प्रवचन है, किंतु समाज में ऐसा भाव प्रचलित होता है आजकल कि भागवत का सप्ताह होना चाहिए। लोग भागवत सप्ताह का नाम सुन करके सुनने के लिए आते, सात दिन हो नौ दिन हो, विशेष करके एक महीने का यह अनुष्ठान रखा जाता है, क्योंकि गृहस्थ भक्तों को तो उतना समय नहीं है सुनने का, जो साल भर अच्छी तरह से सुने, इसलिए ऐसा अनुष्ठान कर दिया जाता है जिससे कि सात दिन तक गृहस्थ लोग अपना समय लेकर के अवकाश से श्रीमद् भागवत का जितने भी मंगल अनुष्ठान है श्रीमद् भागवत के समान और कीर्तन के बराबर कोई भी अनुष्ठान मंगलदायक नहीं है। सात दिन में भागवत नहीं होता, इसके एक एक श्लोक में श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक क्या एक एक इसके शब्द में जैसे निगम कल पतरो चांस कला उनका प्रश्न तू भगवान बदंत सप्त विगत सप्तम जग ज्ञान महत्व इन एक एक श्लोक के एक एक अक्षर में ही वेद वेदांत उपनिषद सूक्ति उपनिषद इत्यादि पुराणों के सबके साथ उसमें निहित है। हम लोग के गुरु जी के गुरु जी शिलभक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जिस समय अविभक्त बन रहा था केवल पहले इस श्लोक पर उन्होंने करीब करीब डेढ़ महीने दो महीने केवल एक ही श्लोक पर किया और उसमें समस्त भागवत भी आ गया और उनका पूरा नहीं हुआ एक महीने। इसलिए यहाँ पर तो सब समय होता है और बहुत सुंदर से होता है तो उतना समय लोगों को। प्राचीन काल की बात है, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर उद्धव जी उनके आदेश से बद्रिकाश्रम क्षेत्र में चले और वहां पर बद्रिकाश्रम में रह करके भागवत का चिंतन करने विधिर और मैं कई का ही वही पर संवाद हुआ भागवत के समय। विदुर जी के दो रूपकम उनके उद्धव जी के दो रूप हैं, एक रूप से वो पत्रिकाश्रम रहते हैं और दूसरे स्वरूप से वो वृंदावन में रहते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवत में कहीं दो क्षेत्र हैं, एक साधन क्षेत्र है और एक शास्त्र क्षेत्र है। वृंदावन साधन क्षेत्र है और उस समय में बद्रिकाश्रम साधन का क्षेत्र, नरनारायण जी वहां पर साधन करते हैं भागवत इत्यादि का प्रवचन पाठ में, इसलिए एक स्वरूप में वहां आता के दूसरे स्वरूप से उद्धव जी ब्रज में गोवर्धन के पास में नागकुंड के पास में कुसुम सरोवर के सन्निकट श्याम कुटी के पास में वो रहते हैं, तीन और गुण लता करके रहते हैं। तो जब कृष्ण का अंतर ध्यान लीला हो गई उस समय में चारों तरफ में द्वारका भी वीरान हो गया और उधर पहले से तो ब्रजभूमि वीरान सी दिख रही है। धाम तीन प्रकार के धाम की तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक प्रकट लीला कर, एक अप्रकट लीला कर और एक यथा अवस्थान करती है अभी जो दृश्यमान, अभी हम लोग इसको देखते हैं दृश्यमान। इसमें वृंदावन में जो कृष्ण की प्रकट लीला नहीं थी अभी नहीं दिख पड़े, सुंदरता चारों तरफ मौन मौन से दिख पड़े, किंतु वहां लीलापा ये चल रही है। कोई कोई भाग्यवान भी उसका दर्शन कर पाता है सभी लोग, और जिस समय द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण की लीलाएं प्रकट हुई थी और बाल्यकाल से लेकर के किशोर अवस्था तक जो लीलाएं थी ब्रजावली पर लीलाएं हुई थी वो प्रकट लीला, इसके बाद वो मथुरा मिली जाए फिर वहां से द्वारका मिली जाए तो वो प्रकट लीला और एक अप्रकट लीला। गुरु बैकुंठ वृंदावन में वो लीलाएं सब समय चलती है, वही लीलाएं यहां पर अभी भी चल रही है उसको अप्रकट कहते हैं और अभी जो हम देखते नहीं है ये दृश्यमान। तो जिस समय कृष्ण चले गए द्वारका पूरी प्लावित हो गए और यहां पर भी शून्य चांद दिखने लग गया। कुछ दिनों के बाद में परीक्षित महाराज हस्तिनापुर से यहां आए, यहां आकर के देखा उस समय बद्रनाथ यहाँ के राजा थे, उन्होंने ही उनको राजगद्दी पर बिठाया। उनसे पूछा कि आप कुशल से हैं? हाँ, आपकी कृपा से मैं कुशल से। फिर उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों ने, विशेष करके कृष्ण ने हमारे ऊपर और हमारे वंश के ऊपर प्रचुर कृपा की, इसलिए इस वंश का अब तुम लोगों का मैं ऋण हूं। परीक्षित जी ने कहा, मैं तुम लोगों की क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे गुरुजन हैं। मैं यहां पर राज्य में हूं, यहां मथुरा था, किंतु कोई भी जनता नहीं है, बहुत थोड़े से, और बिना प्रजाओं का राज्य होता नहीं। मैं समझता कि शून्य शांत जंगल प्रदेश में मैं बैठा हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए यही पता है। उन्होंने शांडिल्य ऋषि को बुलाया, शांडिल्य ऋषि राजा अनंत बाबा के पुरोहित थे। उन्होंने आते ही कहा, तुमको दिख नहीं पड़ता है, ये तो सारी इच्छा है ब्रजभूमि, यहां पर रस नहीं है किंतु है, तो तुम एक बात करो। परीक्षित महाराज जी के उत्तम भाव से यहाँ पर कृष्ण की जितनी भी लीला खलियां हैं, वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, कोकिल वन और द्वादश वन है, उन सब वनों में उनकी लीला स्मृति को स्थापन करो, कहीं सरोवर बनाओ, कहीं मंदिर बनाओ, जैसे वृंदावन में गोविंद जी का, गोपीनाथ जी का, मदन मोहन जी, यहाँ पर केशव देव जी का, गोवर्धन में हरिदेव जी का, कामवन में उनके लीलाओं के क्षेत्र के अनुसार वहां पर कामेश्वर महादेव, यहाँ पर अंगेश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, ऐसे सब लीला स्मृतियां कृष्ण की जितनी है, जितने या तो कुंड के रूप में, मंदिर के रूप में, पवित्र के रूप में, और मैं उनके पास से दिल्ली से हजारों शेखों को मैं ले आता हूं और यहीं पर बैठाऊंगा, और ब्रजमंडल में जितने ब्राह्मण हैं अच्छे अच्छे विद्वानों को ले आता हूं और यहीं पर बताऊंगा, वृंदावन में, यहां में और जिन लीला कर, और प्रकट लीला की भांति में तुम अनुभव करो। ऐसा कर करके प्रसिद्ध महाराज ने सब लोग लेकर के यहां पर बताया, नई रूप से मथुरा तिरुपति वृंदावन बता, और सब लीला चिन्ह जितने क्षेत्र हैं, राधा कुंड इत्यादि और सब जितने स्थान हैं, वो सब लोगों को फिर से पुनरुद्धार किया। उन्होंने क्या किया, राज्य एक बात करो, तुम उद्धव जी का दर्शन करो, तो उद्धव जी का वृंदावन में, गोवर्धन में, तुम अपनी माताओं के साथ में और अपने बंधु माताओं के साथ में चलो, कुछ हम चलो, हम भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। वहां पर रोहिणी इत्यादि सबका नाम है, कृष्ण की जितनी भी 16,000 समाज मनुष्यों है, अर्थात कृष्ण जब प्रकट हो गए तो किसी किसी की ये धारणा है, जो जितनी महिषियां थी उसमें कुछ तो उनके साथ में सती हो गई, उनके साथ ही साथ किताब और खत्म हो गई, और कुछ को जिसको अर्जुन ला रहे थे उनको गोप कुमार ने लोट लिया, गुआ लोट। किंतु ऐसी बात नहीं, न ये तो केवल एक मैस्टरिज्म हुआ, सब वो उनकी जो पत्नियां थी वो सब मथुरा में आई थी, नित्य लीला में भी है, अपरत लीला में भी है, दृश्यमान में कहीं दिखती है कभी नहीं दिखती, किंतु वो सभी थी। उन सब लोगों को लेकर के, बंधु बांधवों को लेकर के परीक्षित महाराज जी और ये वहां पर सब और सब ने मिलकर सामूहिक रूप से कीर्तन करना आरंभ किया। वहां पर कीर्तन करेंगे और उद्धव जी आएंगे तो उनके मुख्य अंग श्रीमद भागवत का श्रवण करें। होने लग गया कीर्तन। इतने में देखा क्या, इंद्र स्वर्ग से आए, गर्भ बाजुन इत्यादि सब पांडव लोग आए और आकर के मृदंग इत्यादि बजाने लगे और साथ ही साथ में जितने ऋषि मासि थे वो लोग उपस्थित हो गए। थोड़ी देर के बाद में उद्धव जी पास ही से वन में से झाड़ियों में से निकले और एकदम कीर्तन करते हुए एकदम विभोर हो गए। उनको देखते ही एकदम नवजीवन सब में संचार हो गया। सब लोगों ने उद्धव जी को प्रणाम किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, पृथ्वी का दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद भागवत का श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय श्रीमद भागवत अतिरिक्त किसी भी प्रकार से हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा समझ सोच करके उनको उन्होंने कहा। उन्होंने श्रीमद भागवत एक महीने तक श्रीमद भागवत का पाठ किया करा। उसमें कृष्णचंद्र जी समस्त गोपियों के साथ में कभी कभी प्रकट हो जाते और अपने लीलाओं को सबको दर्शन करा देते। ऐसे सुंदर रूप से एक महीने तक वहां पर बसा। इसके बाद में एक महीने के बाद में उद्धव जी का जब भागवत समाप्त हो गया, सभी लोग कृपात हो गए और इसके बाद में सब लोग अपने अपने स्थानों में लौट गए। उसी के बाद में परीक्षित महाराज जी को उन्होंने आदेश दिया था कांडिक लेजी ने, कलयुग चारों तरफ में है इसलिए कलयुग न प्रवेश करने पाए कथा होगी, इसलिए कवि को शांत करने के लिए उसको दमन करने के लिए आपको एक व्यवस्था। उसी के समय में वही व्यवस्था में से कहीं से उनका भेद हुआ और कैसे वो अभिशक्त हुए और अभिशक्त होने के बाद में कैसे सुखदेव गोस्वामी उनकी राजसभा में आए और सात दिनों तक प्राय उपवेशन किया, बिना खाए पिए सोए आराम किए, बड़ी श्रद्धा के साथ में सात दिन तक भागवत का श्रवण किया। ये सभी आप लोगों को पता है। श्रीमद भागवत के बात करने से कली का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, सभी को दस नहीं सका, ऊपर से लोगों को दिख पड़ा कि ये सांप उनको दस रहा है, किंतु वो तो एकदम कहा अपना चित्त कृष्ण में और आभा जी में लगा करके संपूर्ण रूप से अपना शरीर से अपने गुरु वृंदावन धाम में रूप बन तो ये किसी को दिख पड़ा किसी को नहीं दिख पड़ा। उसी तरह से जो श्रद्धा पूर्वक श्रीमद भागवत का उनका आत्मा का भी कल्याण हो गया, साथ ही साथ में क्रमशः कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश करके गुरु वैकुंठ धाम की उनकी प्राप्ति और अपने अपने स्वरूप के अनुसार में जिस जिस तरह से वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं उसमें उनकी प्रतिष्ठा। आप लोगों ने इसके संबंध में महात्मा के संबंध में वो क्या गोकर्ण द्वंद्वकारी इत्यादि की कथाएं भी हजारों बार सुनी है, मैं उसका पुनः प्रवर्तन नहीं करना चाहता और बल्कि हम लोग के दृष्टि से द्वंद्वकारी और उनका श्रवण करना कुछ सहायक था। उनको कृष्ण प्रेम हुआ कि नहीं ये पता नहीं, किंतु परीक्षित महाराज जी को हुआ ये गारंटी, ऋषि लोगों को हुआ, क्योंकि उस नियत से उन्होंने श्रीमद भागवत का श्रवण नहीं किया। आप लोग एक कोई उद्देश्य ले रहे हैं, लेकिन इस उद्देश्य से हम श्रीमद भागवत श्रवण करते हैं, आत्मा से उद्धार होने के लिए नहीं। ब्रज में मथुरा में या ब्रज प्रदेश में कहीं भी किसी का जन्म हो या कहीं दूसरी जगह किराने वाले भी हो करके रहने वाली हो करके भजन करने की दृष्टि से वृंदावन में मथुरा में आए, अथवा यहाँ पर शादी हो गई या किसी रिलेशन से यहाँ मथुरा में आना हो गया है, तो समझे कि उसके पाप ताप अब नहीं है। काफी यदि कोई पाप करता है तो वो वज्रलेप के समान हो जाता है, वो शादी नहीं जाएगा। इसे मथुरा में कभी भी पाप की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, और वैसे यहाँ पर कोई पाप ही नहीं आ सकता है, इसलिए उनको पाप ताप दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का स्मरण नहीं करना है। उनको साधारण रूप से कृष्ण प्रेम के लिए ये भागवत सुना है, ये जन्म जन्मांतर के लिए कृष्ण के चरणों में हम आ गया है, क्योंकि भक्ति हो और उनकी प्राप्ति हो। भक्ति उसे भी बढ़ करके गोपी प्रेम, गोपी प्रेम का उद्देश्य होकर के गोपियों ने कृष्ण के प्रति जैसे सेवा की, इस प्रकार से और इस गोपी प्रेम में भी कृष्ण ने गोपियों की कैसे आराधना की, राधा जी की आराधना की, इस विषय को समझना है। किंतु ये 7 दिन में 9 दिन में 1 महीने में ये सब चीजें नहीं होंगी, ये जो मैंने भाव रखा है। सब लोग कृष्ण की आराधना करते हैं। हमारे उद्धव जी भी कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण की आराधना कैसे की, घर बार सब छोड़ दिया, पति छोड़ दिए, आज धर्म छोड़ दिया, भेजे मुकुंद पदवे सुधनी प्रवेश किया। उन्होंने कहा आशा बहु चरण रे विषाम हम श्याम वृंदावने किम गुरमल औषधीना, जब दुष्ट सजन आज पथन चरित्र दुष्ट सज आज पथ गृह की श्रृंखलाएं बेड़िया माता पिता गुरुजनों का की आज्ञा, लोक लज्जा धज सबको छोड़ करके कृष्ण की उन्होंने आराधना। उद्धव जी कहते हैं किंतु शास्त्र में स्वयं कृष्ण जी ने कहा मैं गोपियों तुम्हारा भजन करने के लिए मैं अंतर ध्यान खोले था, मैं तो तुम्हारे पास ही में घूम रहा था, तुम्हारी उन सुंदर भावनाओं का आस्वादन कर रहा था और मैं तुम्हारा भजन कर रहा था। भजता तिरोही था, कृष्ण ही भजन कर रहे हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत का ये तात्पर्य है। कृष्ण ही राधा जी की आराधना, गोपियों की आराधना करते हैं, किंतु ये बहुत ऊंची भावना है, साधारण लोगों के लिए समझ में आना बहुत कठिन, किंतु भागवत का उद्देश्य ये, इसलिए आप बड़े प्रेम के साथ में श्रीमद् भागवत श्रवण करें। मेरे लिए 3 घंटा बोलना बहुत मुश्किल है, इसलिए शुभानंद जी भागवत सूत्र है, बहुत दिनों तक भागवत का अध्ययन किया है। साधारण रूप में जो पाठक पाठ करते हैं उनके जैसे नहीं ये लोग हैं, न किसी दान की जरूरत है, न दक्षिणा की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत, आप लोगों का भी कल्याण हो। वैसे हम लोग कभी भी सप्ताह इत्यादि का पाठ नहीं करते, क्योंकि उसमें सकाम भावना है, आप लोग कोई भी सकाम भावना के यहाँ पर मत सुने, कृष्ण प्रेम के लिए ही समर्पित जैसा है, तो उसी रूप में ये भागवत का पाठ करेंगे। और पाठकों से हम लोगों का भागवत का पाठ कुछ विलक्षण है, उसी रूप में आप लोग इसका श्रवण करें। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार से हम लोगों का 9 दिन का है, मेरी इच्छा थी कि 12 दिन का हो, किंतु लोगों को कुछ असुविधा थी, इसलिए 9 दिन के लिए हम लोगों ने रखा है। 9 दिन में आप लोग खूब अच्छी तरह से सुनेंगे। सवेरे 7 बजे हम लोग आरंभ करेंगे, 10 बजे समाप्त करेंगे, शाम को 4 बजे आरंभ करेंगे, 7 बजे 7:15 बजे तक हम लोग सिंहदेव जी से प्रार्थना करता हूं, गिरिराज जी से निर्विघ्न हम लोगों का यह समाप्त हो। और राधा विनोद बिहारी जी, चैतन्य महाप्रभु गिरिराज जी इसके स्वयं श्रोता है, यहां पर हरि कथाएं होती हैं,
यही मूल श्रोता है, अपनी कथा अपने ही सुनते हैं और सुन करके उनके हृदय में प्रवेश करके उनका कल्याण करते हैं। उसी तरह से ये मूल श्रोता है, सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, जबकि जब ब्रह्मचारी सन्यासी श्रोता भी उच्च कोटि के हैं यहाँ मथुरा के वृंदावन, और सब जगह ऐसे श्रोता भी नहीं मिलते हैं। तो हम लोग श्रोताओं को और पहले ठाकुर जी को गुरु जी को देखो एक बात याद रखना, भगवत भजन में गुरु ही मूल चीज है, कृष्ण इत्यादि नहीं है पीछे है, इसलिए गुरु को जिसकी निष्ठा है वो तो पार कर जाएगा, वो तो भागवत श्रवण का अधिकारी है। भागवत के पाठक कौन है? सुखदेव गोस्वामी। श्रोता कौन है? साक्षात जारी। ये सब के गुरु हैं। भागवत की भी गुरु परंपरा है, ये भागवत यहां की नहीं है, बोलो वृंदावन की है, राधा कृष्ण गोपियों के ये हृदय में श्रीमद भागवत है। सुखदेव गोस्वामी उनके परिकर, सुखदेव गोस्वामी वहां से श्रीमद भागवत लेकर के आए गुरु परंपरा की धारा से। कृष्ण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को, नारद जी ने दिया व्यास जी को, व्यास जी ने दिया शिशु को, एक एक पर हाथ पर लेते गए, नहीं तो वहां से गिरता तो फट करके चकना चूर हो जाता, इसने वहीं से लेते आए। और एक दूसरी भी परंपरा है, वो परंपरा कैसे है? नारायण से। नारायण से कौन ऋषि? कत्स्यायन, बात्स्यायन ऋषि, संख्या ऋषि, और फिर उनसे परंपरा से वो बृहस्पति जी, और बृहस्पति से उद्धव जी, इस प्रकार से एक दूसरी परंपरा। तो इस तरह से इसकी बहुत सी परंपराएं हैं, इसे गुरु ठीक मुख्य है, इन्हें गुरु में खुद निष्ठा रखो, और गुरु के निष्ठा से ही ये भागवत हमारे होते हैं। इसलिए आप लोग खूब प्रेम के साथ में सुन रहे हैं, अब ये शुभानंद ब्रह्मचारी जी आपको भागवत पंचापुरुषा पतिता नाम भाव गुरु
व्यास जी को बतलाया, आपने वेदों का विभाग किया, 18 पुराण बनाए, 18 उप पुराण बनाए, 18 शाखा पुराण आपने बनाया, महाभारत की रचना की, वेदांत सूत्र की आपने रचना की, और प्राणियों के लिए जितने प्रकार के अर्थधर्म काम और मोक्ष की बातें हैं आपने सब बतलाया, किंतु आपका चित्त खिन्न क्यों है? आप उदास क्यों? आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए। व्यास जी ने कहा, मैं रोगी हूं, आप वैद्य हैं, मुझे इसी का पता नहीं लग रखा, मैंने सब कुछ जगत में जो कुछ देना था मैंने दिया, प्राणियों के कल्याण के लिए मैंने इतने परिश्रम किए, किंतु मेरा खुद ही चित्त प्रसन्न नहीं हुआ तो और लोगों का क्या होगा? आप कृपा करके बताइए हमारे अंदर में क्या टूटी रह गई। उन्होंने संक्षेप में यही कहा, आपने समस्त शास्त्रों का प्रणयन किया, सबको शिक्षा तो दी, किंतु आपने ये नहीं बतलाया जो जीव की अंतिम जो गति है कृष्ण के चरणों में प्रेमा भक्ति, या कृष्ण को जो कैसे जीव पाते हैं, ये आपने नहीं बतलाया। आपने एक चक्रव्यूह पैदा कर दिया जिससे आदमी धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चक्कर में पड़ा रह जाता है और इसे कभी निकलता नहीं, मोहग्रस्त हो जाता है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, कृष्ण की ऐसी सुंदर मनोहारी लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, अन्यत्र कहीं वेदांत इत्यादि शास्त्रों में कहीं नहीं वर्णन किया गया, सूत्र रूप से वर्णन किया गया है, किंतु आपने वर्णन नहीं किया, उसको वर्णन कीजिए। आपने ये कहीं नहीं कहा कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। लोग देवता देवियों की बहुत तरह की आराधना करते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, देवी की आराधना करता है, और आपने उनको प्ररोचना दिया कि ये सब करो। आपने ये नहीं कहा जिससे इससे फिर तुम जहाँ जाएगा स्वर्ग में या अपने पितृलोक में यहाँ तक कि सप्तलोक में जाएगा, वहां से फिर तुमको लौट करके आना पड़ेगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम खीने पन्ने मर्तलोकम विशल, तुम लोग फिर वहीं से जन्म लेगा और फिर 84 लोग जन्मों में भ्रमण करेगा और फिर वहां जाएगा, फिर वहां से आएगा। आपने छुटकारा का उपाय नहीं बतलाया, नित्य रूप में कृष्ण को कैसे पाया जाता है। आपने कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का वर्णन नहीं किया, आपने रासलीला का कहीं वर्णन नहीं किया। गोपियों ने कृष्ण को कैसे प्यार किया जे कृष्ण उनके सेवक बन गए, उनकी आराधना करने लगे गोपियों की, आपने तो ये कहीं लिखा नहीं, कहीं बतलाया नहीं। इसलिए आप ऐसी सुंदर कृष्ण की मनोहारी लीलाओं को बतलाइए और ये बतलाइए कि इन देवता देवियों की उपासना से कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण की भी आराधना करने से नहीं होगी, राधा और कृष्ण की आराधना करनी होगी, राधा कृष्ण की आराधना से भी बराबरी करने से नहीं होगी। जब आप श्रीमती राधिका और गोपियों के अनुगत्य में कृष्ण की और जुगल किशोर की आराधना करेंगे तभी आपका यथार्थ कल्याण होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत को ऐसा प्रकाश, उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी देखा नहीं सुना नहीं, कैसे वर्णन करूं। अच्छा तुम समाधिस्थ हो, कृष्ण का नाम स्मरण करते 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 वो समाधिस्थ हो गए और उन्होंने हाथ में एक और रखे हुए आंवला की भांति देखा, कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण मथुरा गए, वहां पर भी योग माया के गर्भ से, जसोदा के गर्भ से कृष्ण वहां पर ठीक यहाँ पर जन्म लेते हैं, वहां पर भी जन्म लेते हैं, कितना अत्याधिक को मारा, इसके बाद में और बड़े हुए अस्त्र सबको संहार किया, इसके बाद में किशोर अवस्था में पहुंचे, कैसे कैसे रास लीलाएं हुई, कैसे कैसे वो द्वारका में गए, मथुरा में आए, कंस को मारा, फिर द्वारका में गए, फिर अंतर्ध्यान, इन सब लीलाओं का वर्णन उन्होंने जब देखा और देख करके तब उसी को जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने लिखा। ये एक ऐसा भागवत श्रीमत है, श्रीमद् भागवत जिसके श्रवण करने से, मनन करने से और वैसे ही आराधना करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वर्ग देवी लोक देवलोक सब को पार करके, यहाँ तक कि वैकुंठ को पार करके, उससे भी पार करके रामचंद्र जी का लोक, उससे भी पार करके द्वारका मथुरा को पार करके ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा मिल सकती है। यही जीव की अंतिम गति है और कहीं शास्त्र में नहीं बताया जाए, इस प्रकार से इसमें बताया है। और भी इन्होंने जो उपाख्यान पहले स्कंद में बताया, इसमें एक संदेह होता है, संदेह होता है भीष्म पितामह जी कितने बड़े धार्मिक थे, इतने धार्मिक कि कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी उनकी प्रतिज्ञा रखने के लिए, तो उन्होंने दुर्योधन का पक्ष क्यों किया और दुर्योधन के तरफ से आकर के पांडवों से लड़े, जो परम भगवत भक्त हैं, पांडवों से नहीं कृष्ण से लड़े, क्यों लड़े। भीष्म पितामह जी और तो कुछ नहीं कहा सफाई में, किंतु ये कहा कि दुष्टों का अन्न मैंने खाया था इसलिए मेरी दुर्बुद्धि हो गई थी, इसलिए मैंने इनके तरफ से लड़ा। और जब सरसैया पर मैं चढ़ा तो मेरे रक्त तप्त जितने थे, खाया पिया सब कुछ जब निकल गया, खत्म हो गया, तो मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। दुष्टों का अन्न खाने से ऐसी ही दुर्गति होती है, भगवान का स्मरण नहीं रहता, भगवान की कथा में मन नहीं लगता और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप लोग भी दुष्टों के अन्न से बचने की चेष्टा करें। ये तो उन्होंने कहा, किंतु असल बात उन्होंने छिपाई, कुछ छिपाई क्या, यदि भीष्म पितामह जी दुर्योधन का पक्ष नहीं लेते तो युद्ध ही नहीं होता, और युद्ध नहीं होता तो इन दुष्टों का संहार नहीं होता। केवल मात्र भीष्म पितामह के बल पर ही किसने दुर्योधन ने हट करके युद्ध आरंभ किया, और कृष्ण ने इसी का सुयोग लेकर के अपनी योग माया की बुद्धि से भीष्म पितामह के बुद्धि को भी भ्रमित रखा। यदि ये नहीं रहेगा उनके तरफ में तो कोई युद्ध होगा नहीं, आज ही वो दुर्योधन सरेंडर कर देगा, बस खत्म हो जाएगा दुष्टों का संहार। इसलिए इन दुष्टों का भी संहार करना है, संसार में जितने दुष्ट है उनको भी संहार करना है, और यहाँ तक कि हमारे कुल में हमको भी भगवान नहीं जानते, हमारी भी परवाह नहीं करते, सोचते भी हमारे जैसा ही एक है, हमसे जरा बलवान है, हमारी भी उपेक्षा करते हैं, उन लोगों को भी संहार कराना है। और तब भी समय शांति दे करके श्रीमद् भागवत को प्रकाश करके और हम तब जाएंगे। इसलिए चला की चतुराई से कृष्ण ने ही ये सब कुछ किया। ये जितना महाभारत का युद्ध हुआ किसने लड़ा, केवल अकेले कृष्ण ने। जिसमें ये महाभारत युद्ध होने वाला था उस समय में भीम का पुत्र हिडंबासुर घटोत्कच और घटोत्कच का एक पुत्र था
बर्बरी,
बर्बरी उसका नाम था, बर्बरी छोटा सा शिशु था, वो आया हुआ कृष्ण को प्रणाम किया, बोला जी महाराज कृष्ण जी आप आदेश दें, मैं पांडवों के साथ में युद्ध पांडवों के तरफ में रहूंगा, युद्ध करने की नौबत नहीं आएगी। तो क्यों, एक बाण से मैं जितने यहाँ पर उपस्थित हुए सब लोगों को समाप्त कर दूंगा, दूसरा बाण उठाऊंगा ही नहीं। पूछा कृष्ण ने किसी से, अच्छा ये महाभारत युद्ध हो रहा है भीषण, तुम कितने दिनों में ये युद्ध जीत लेगा और सब वीरों को परास्त कर देगा। उन्होंने कहा 10 दिन में सबको खत्म कर दूंगा।
इसने कहा, इससे पूछा ये तू क्या करेगा, पलक झपकते ही सबको समाप्त कर दूंगा। कृष्ण कैसे करेगा, जरा प्रभाव दिखाओ तो कैसे करेगा। उसने एक बार उठाया एक घास तीन तीन मैंने दुर्गा घास होती है दूध की, उसको लिया और उसको टेढ़ा कर दिया और उस पर एक दुर्गा घास चढ़ा दिया, आंख बंद किया और ऐसे खेचा उसे, और उसे एक फूल लिया, उस फूल के अंत में रंग लगा दिया कुछ गुलाल रंग या कुछ, और जब छोड़ा उसको एक मिनट झपते देखा कि विश्व के जितने वीर हैं और वहां पर उपस्थित दोनों तरफ में थे सबके कलेजे में वो फूल लगा, उस पर लग गया। देखो ये मैं ये तो रंग से दिखलाया मैंने, ये तो अभी ना मैंने किया, किंतु इसी बार को यदि उठाऊं तो दोनों तरफ के समस्त वीरों को समाप्त करूंगा, बस महाभारत में एक सेकंड नहीं लगे। कृष्ण ने कहा जी ये तो बड़ा भारी दुष्ट है, तो कोई विजय नहीं होने देगा, पश्चात सुदर्शन से उसका सिर काट रहे काटने पर कहा जी प्रभु आपने हमारा सिर क्यों काट दिया, मैंने क्या अन्याय किया, तो तू नहीं समझेगा जी तूने क्या अन्याय किया, तो प्रभु आप जैसे हुआ वैसा कीजिए, हमको एक ऊंचे स्थान पर रख दीजिए हमारा सिर, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ कि कौन कैसे कैसे वीर हैं, हमारे समान कोई है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि कोई हमारे समान नहीं, यदि है तो आप ही हैं, मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ, बस एक ऊंचे टीले पर उसका सिर रख दिया। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया पूरा, दोनों तरफ के सब वीर मारे गए, द्रौपदी के 5 शिष्य भी मर गए, विश्वदुम्न इत्यादि मारे गए, दुर्योधन के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रह गया, उसके तरफ के सब खत्म, उसके तरफ में केवल 3 आदमी बचे, एक अश्वत्थामा कृपाचार्य जी और एक
कोई सपनी या कौन बचा था, सपनी नहीं एक और कोई बचा, और इनके तरफ में
पांच पांडव बचे बस और कृष्ण बचे
और कोई नहीं बचा। उस समय में जब युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण ने कहा अच्छा भाई ये युद्ध को किसने जय किया, अर्जुन ने कहा मैंने, मैं नहीं रहता तो भीष्म पितामह द्रोण कर्ण इत्यादि को कौन मारता, और इन्हीं को मारने के वजह से सब लुभा नहीं तो कोई नहीं जीतता। भीम ने कहा दिख मत ठाको मैं यदि दुर्योधन का ये जंघा नहीं तोड़ता, दुशासन का खून नहीं पीता, रजस्वला द्रौपदी के प्रतिज्ञा को उनके रक्तों से उसका केश नहीं बांधता, तू अकेले क्या तू ही जड़ा आधा पुरुष और आधा नारी तू क्या करता। अर्जुन ने कहा क्या मैं नहीं किया, बखन उसे तो देखे तुम अपने गदा लेकर के आ जाओ, दोनों मैदान में उतर गए। कृष्ण ने कहा ठहरो 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 बर्बरी के यहां गए, चलो बलदीप को आम सिर रखा, पूछा जी भाई इस युद्ध में किसने ये युद्ध को जीता। उन्होंने कहा हमने तो देखा जी प्रारंभ से और अंत तक सब कुछ देखा और यही देखा है केवल आपने ही युद्ध किया और आप ही जीते, और अर्जुन भीम और भीष्म पितामह इत्यादि जितने थे वो कठपुतली की तरफ में नाच रहे थे। मैंने कहा उनका अभिमान सब कुछ दूर हो गया, उनका सिर नीचा हो गया। भीष्म पितामह जी उसी को कह रहे हैं पांडवों से देखो ये काल है, काल के द्वारा ये सब कुछ हुआ, किसी का दोष नहीं, न पांडवों का न दुर्योधन का, किसी का दोष काल सब कुछ कराता है, इसलिए शत्रु मित्र अपने में मत समझो कि वो हमारा शत्रु है मैं उनका मित्र हूँ। भागवत सुन करके यदि ये विचार आया जो हमारा कर्म ही या काल सब कुछ करा रहा है, हमारा कोई दूसरा शत्रु और कोई मित्र नहीं है, ये भागवत श्रवण का और चित्त को शुद्ध करके शत्रु मित्र सबसे दूर रख करके वही श्री कृष्ण जो सभी कुछ करने वाले वही कराने वाले हैं, बस उनका स्मरण करो उनकी लीलाओं का स्मरण करो सब कुछ अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। और यदि चित्त ही चंचल रहा भागवत को सुनने से न जाने क्या होगा ये क्या होगा ये दुख आ रहा है विपत्ति आ रही तो भागवत सुनना, इसलिए ऐसे चित्त को स्थिर करके भगवान की कथाओं को सुनो, ये सब को दूर करके और तब आज ही तक रहे, शाम को 4 बजे से पुनः भागवत आरंभ होगा, 21 तारीख तक ऐसा ही प्रोग्राम चलेगा। आप लोग जितने आदमी हैं देख करके बड़ी खुशी हुई, सब लोग आए, अब इसमें आदमियों की कमी ना हो बल्कि आप लोग एक एक आदमी दो दो व्यक्तियों को साथ में लाने की चेष्टा करेंगे और करेंगे तब तो ये भागवत का सुनना हुआ। और एक बात सावधान करता हूं भाई, कभी जैसे हनुमान जी नारद जी और सब ऋषि महर्षि सब इसमें आते हैं, किसी किसी न किसी रूप में आते हैं, मनुष्यों का रूप धारण करके ऐसे मालूम होता है जो हम चिंता किंतु कोई चिन्हेगा नहीं वो उसमें आए हुए हैं, ऐसे इसमें कली भी आता है और अपने बेटे और लड़कियों को स्त्री को लेकर के आता है। जम्भाई ये क्या है, निद है, ये उसकी लड़कियां हैं प्यारी बेटियां हैं, पहले जम्भाई आएगी और उसके बाद दो जब जम्भाई थक दो पहुंचेगी तो निद्रा देवी आकर के तुम्हारे आंखों पर चढ़ जाएगी, 1 करोड़ मन का पत्थर लेकर के आंखों पर उठने नहीं देगी। क्यों काल ऐसा इसलिए कराता है, जो लोग इस कथा में सुने जो सुनेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे और जो नहीं सुनेंगे सो जाएंगे, उनका भागवत सुनने का फल हमको मिल जाएगा उनको नहीं मिलेगा, तो जो सोएगा तो उसका फल कली को मिल जाएगा और वो चले जाएगा, और बाकी जो सोएंगे
सब लोगों का पाप लेकर के वो रह जाएंगे, उनका भागवत सुनना नहीं है। इस तरह से सावधानी के साथ में आप लोग सुनिए। अभी कीर्तन के साथ में हम लोग भागवत की आरती करेंगे, इसके बाद में आप लोग तुलसी इत्यादि के प्रसाद लेकर के जाएंगे, फिर शाम को आएंगे। बहुत प्रणाम।
कोई भी उसमें निचोड़ने लायक कोई फेंकने लायक कोई चीज नहीं, ऐसा रस में भी। विशेष करके सुखदेव गोस्वामी के द्वारा स्पर्श किया हुआ। सुखदेव गोस्वामी को अपने आप कहा है कि मैं निर्गुण में प्रतिष्ठित था, निर्गुण ब्रह्म में मैं प्रतिष्ठित, किंतु मेरे पिताजी ने कृपा करके हमको वन से बुलाकर और सुमत भागवत की रसमयी कथाओं में हमने लगा दिया है। बड़ी उनकी कृपा। सुखदेव गोस्वामी जी के दो स्वरूप, पहला स्वरूप वो उनको बैठने दे, आप चले उनको बैठने। एक स्वरूप है वो अपने नित्य स्वरूप में प्रिया जी के बड़े प्यारे सुख पक्षी शुभानंद जी ने बतलाया, संक्षेप में बतलाया, किंतु इस लीला में श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है जन्म लेते ही वो घर से निकल गए और पिताजी उनको हा पुत्र कर रहे हैं और वो उत्तर नहीं दे रहे हैं, उनके बदले में प्रतिध्वनि हो रही है हा पुत्र हा पुत्र, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी मैया, कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। यथार्थ में हमारे भी दो स्वरूप हैं, ये ऊपर से एक हारचा मंच का अभी दिख रहा है, कोई स्त्री कोई पुरुष कोई बाप कोई बेटा कोई ये सब दिख रहा है, पंच भौतिक शरीर ये देता है, हम ये नहीं है, ये एक कपड़ा ऊपर से उड़ा दिया गया। भीतर में हम लोग स्वरूपता कृष्ण के दास दासी हैं, किंतु अभी हमें प्रतीति नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये हमारे पिता हैं, ये मेरी मैया है, ये हमारे पति हैं, ये इसकी स्त्री है, इसलिए परस्पर स्वार्थ से हम जड़े हैं, भगवान से कोई संबंध नहीं दिख पड़ता, किंतु असल में हम लोग सभी गुरु वैकुंठ धाम के रहने वाले, इस जगत में अपने दोस्तों के कारण जी भगवान को भूल गए और इस जगत में पचड़े में पड़ गए, और जितने जितने निकलने की चेष्टा करते हैं उतने ही दलदल में हाथी की तरह में और भीतर फंसते चले जाते हैं, और अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं इस दलदल के फंसने में। तो सुखदेव गोस्वामी यथार्थ में स्वरूपतः तो श्रीमती राधिका के बड़े प्रिय सुख थे। जब कृष्ण की और राधा इत्यादि जी की वृंदावन की लीला चल रही थी, एक समय श्रीमती जी बरसाने में थी, अपने सुख को अपने हाथ पर लेकर बैठा रखी थी बाएं हाथ पर, और उसको अनार के दाने को सुंदर सुंदर रसमय मीठे मीठे अनार के दाने को खिला रहे। कभी किसी दिन चावल और दूध, अच्छे बारीक सुंदर चावल सुगंध और खीर बना दिया था, उसको एक एक दाने उसके मुख में दिया और कातिया ये सुख पढ़ो, कृष्ण कृष्ण सुख पक्षी किसी की नकल करने में बड़ा तेज होता है और जिसका जैसा कलर आएगा वैसा ही बोलेगा। जैसे श्रीमती जी ने बड़े मधुर कोमल स्वर से कृष्ण कृष्ण उच्चारण किया, सुख पक्षी जी ने ठीक वैसे ही मधुर बोली से राधिका जी के वचनों को ठीक अनुकरण करके और ठीक वैसे ही बोली में बोला, कृष्ण कृष्ण जब कहा राधा जी बड़ी प्रसन्न हो गई
ऐसे ही उसको पढ़ाया करती, भोसने करती। एक दिन पक्षी के स्वभाव के चांचल्य के कारण उनके हाथों से उड़ गया और उड़ करके सुंदर बाग बगीचे से युक्त नंदगांव की तरफ में चला। बड़ी हरियाली यहां नंदगांव में, हरियाली से आकृष्ट होकर के जब यहां आया तो देखा कि मधुमंगल और कृष्ण एक उपवन में नंदबाग में परस्पर विनोद कर रहे हैं। ये एक तमाल वृक्ष के ऊपर में बैठ गया, ये लोग खेल रहे थे, परस्पर बातें कर रहे थे। इतने में उसने कृष्ण 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 किया, चौंक गए कृष्ण, ये राधा कहां से बोल रही है? चारों तरफ में राधा को खोजने लगे, राधा जी के शब्दों का अनुकरण करके वैसी ही मीठी बोल मधुर में बोल रहा था। राधा जी कहां है चारों तरफ खोजने में, किंतु राधा जी दिखाई नहीं पड़ी। कमाल वृक्ष से जब वो फिर शब्द आया तो उन्होंने देखा एक शुभ पक्षी राधे राधे का पर्याप्त कृष्ण कृष्ण बड़ी आकृष्ट हो गए। इतने में वो कहता है पक्षी थे खूब सुंदर एक गान के संगीत के रूप में एक श्लोक का उच्चारण किया। ओ मेरा जैसा सौभाग्यवान कोई नहीं था, मैं श्रीमती जी के हाथों पर मैं खेलता था, बड़ी लाज प्यार से मुझे खिलाते पिलाती थी, किंतु मैं महा कृतज्ञ अकृतज्ञ हूं, उस प्यार का कोई बदला नहीं दिया। मैं उनके हाथों से उड़ करके पक्षी के स्वाभाविक चांचल व्यवस्था में उड़ करके घर में आ पड़ा, किंतु मेरा कितना दुर्भाग्य है मैं राधा जी के हाथों से यहां चला है, जहां उनके हाथों पर मैं खाता था सब कुछ, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। कृष्ण सुन करके उसके कोमल और रोते हुए उसके बर्तनों को सुनकर के बड़े प्रभावित, उन्होंने बड़े बड़े प्यार से उस सुख को बुलाया। बुलाते हैं वो उनके हाथों पर कूद करके चलाया और उनके बाएं हाथ पर वो बैठ गया। मधुमंगल सिंह ने अनार का दाना लिया और उसको खिलाने लगे। बोलो तो तुमने क्या कहा था? तो उसने कहना था कृष्ण कृष्ण, और फिर वही मैं महादुर्भागा श्रीमती जी के हाथों से उड़ करके और पक्षी के चांचल्य वशता में यहां आ गया, मेरा जैसा और कोई दुर्भागा व्यक्ति नहीं। कृष्ण सुन करके पर बार बार उसे पढ़ाने लगे और फिर उसको पढ़ाने लगे राधे राधे, देखो तो तुम राधे राधे, कृष्ण के स्वर से अब कृष्ण का स्वर नकल कर लिया और राधे राधे का, अब बड़े प्रसन्न हो गए और उसे खेलने लग गए। इतने में दो सहेलियां हैं वो, एक श्रीमती जी की प्रधान सहेली ललिता जी, दूसरी विशाखा, आकर के बोली कृष्ण ये तो हमारी प्रिया जी का ये सुख है, उसके बिना एक मिनट नहीं होती भी तरह से, तुम इस सुख को दे दो, उसके लिए बड़ी चिंतित हो रही है, तुम इस सुख को लौटा दो। ये किसका सुख है? तो श्रीमती जी का है, तो तुम ले जाओ, तुम बुला लो, यदि तुम्हारे बुलाने से आ जाता है तो ले जाओ, तुमने चेता की बुलाने से तू आया नहीं। तो उन्होंने कहा जी आप जिसको रखें और जिसको स्नेह करें वो भला कहीं जा सकता है, वो कहीं नहीं जा सकता, तो आप देखो तुम अपनी श्रीमती जी को बुला लो और वो जब इसको ले जाते वो ले जा सकती है, तो ये श्रीमती जी यहां नहीं आती। कृष्ण ने किसी प्रकार से जब नहीं लौटाया तो वो लौट करके यशोदा मैया के पास में गई और मैया से उलाहना दिया, ये हमारी प्रिया जी का सुख इसने पकड़ लिया और ये दे नहीं रहा है, कहिया सकल पैसे तुम बैठो मैं भी आती, ये कर करके गई। पर्याप्त वहां पर पहुंच करके जहां पर कृष्ण और वो विनोद कर रहे थे उसे राधे राधे इत्यादि बुलवा रहे थे, उन्होंने जाकर के झपट्टा मार करके और उसे दे दिया पशु कल तुम बड़े गंदे लड़के, कभी पशुओं से कभी पक्षियों से कभी किसी में और उसी में तुम लगे रहते हो, खाने पीने का समय हो गया तुमको याद नहीं। और दोनों को हाथ पकड़ करके जबरदस्ती उठा लिया और उठा करके उनको खाते हुए घर में लेने आए, ये लोग कुछ ना कर सके, इनके भरी रह गई सब योजना। इसके बाद में घर में ले आई और कृष्ण को आज अभी स्नान करो, और लगा दिया सेवकों को उनके स्नान करने में, और सुख पत्ती को लेकर के और सखियों को दे दिया, और सखियां लेकर यशोदा माँ आ गया, माँ के आगे उनकी एक भी नहीं चलती है, यही भक्ति है। ऐसी भक्ति भगवान के प्रति करना पड़े, करना हम लोग चाहिए, जैसे कि कृष्ण भी उस प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाए। वो पर ब्रह्म है सबके, सब ईश्वरों के ईश्वर है, किंतु प्रेम के में वशीभूत हो जाए। इस प्रकार से तो ऊपर चला गया। इसके बाद में जब लीला समाप्ति हो गई, कृष्ण अंत ध्यान होने लगे, श्रीमती राधिका इत्यादि जी ब्रज की लीला को समाप्त किया और द्वारका लीला भी समाप्त हो गई, तो उस समय में सभी लोग कृष्ण चले आए गोकुल में, वो किसको दंत वक्र को मारने के वाहन मारा और गोकुल में गए। और उस समय में सब जितने उनके परिकर थे उनके साथ में कुछ दिन रह करके और सबको देख करके नंद बाबा यशोदा श्रीमती राधिका ललिता विशाखा और जितने ब्रजवासी से सब लोग को लेकर के गोलोक एकदम वृंदावन में चले गए, और अपना मथुरा और द्वारका का जो स्वरूप है उससे दूर द्वारका की तरफ में चले गए। किसी को ये पता नहीं चला, किंतु सुख को आदेश दिया, हम लोग तो जा रहे हैं, तुम मत जाना। जैसे रामचंद्र जी चले गए तो उन्होंने आदेश दिया हनुमान को, ये तुम ही पृथ्वी पर आना, और जो लोग भगवान को भूल जाते हैं उनके लिए जहां जहां लीलाएं होंगी हमारी कथाएं होंगी वहां पर तुम सब इसकी इसका प्रचार करना, इसके लिए तुमको रहना पड़ेगा। उसी प्रकार से इनको आदेश दिया, इनको आदेश दिया था। और सुख उद्धव जी थे, हमारे जाने के बाद भी तुम लोग रहना, इसलिए सुख जो थे रोने लगे, आप लोगों को छोड़कर के मैं नहीं रह सकता, मैं कैसे रहूंगा। कृष्ण का आदेश था, श्रीमती का आदेश था, हम लोगों के जाने के बाद में सभी कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम रहेगा तो फिर ये श्रीमद्भागवत रूपी पुराण सूर्य को तुम प्रकाश करेगा और उसे संसार का कल्याण होगा। इस कल्याण के लिए तुमको यहां आना है, हमारी सेवा करना है, कह करके तो वो लोग चले गए। ये विरह में तड़पते हुए राधा कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए इधर उधर भटकने, इसके बाद में वो चले गए कैलाश में। शंकर जी परम भक्त है, वही श्रीमद भागवत की कथा वो उनसे कह रहे थे पार्वती। इसके बाद की जो कथा है आपको ब्रह्मचारी जी ने ये सब बतलाया, वो पेड़ पर बैठ गए और हुंकारी भरने लगे। पार्वती जी सो गई, कुछ स्त्रियों का स्वभाव है या क्यों उन्होंने व्यास जी ने लिख दिया मुझे ठीक पता नहीं चलता, उन्होंने क्या पक्षपात किया है, व्यास जी ने पुरुषों के प्रति ये पक्षपात किया जो वो सो गई, विशेष करके सो गई। अभी ये प्रसंग आ रहा है सृष्टि का, तब तो ज्ञानी तो उसमें जगेंगे, और बाकी जो साधारण रूप में देखा जाता है जिनका तत्व में खूब प्रवेश नहीं है तो इसमें सो जाते हैं, आप लोग मत सोएंगे क्योंकि उन्होंने दिखला है उनसे वंचित रह गई कथा से, तो इसलिए वो तो सो गई और ये हुंकारी भक्त रहे। अंक में जब उनकी नींद खुली फिर उन्होंने कहा जैसे हमको फिर से सुनाइए, तो ये कौन सुना, अनाधिकारी व्यक्ति, अनाधिकारी व्यक्ति इसको नहीं श्रवण करे। अनाधिकारी कौन है, देह में जो आत्मा की बुद्धि रखता है, मैं ये शरीर हूं और संसार के कामों में फंसा रहता है, वो लोग अनाधिकारी। तो आप लोग कहेंगे तो हमको क्यों सुनाया जा रहा है, इसलिए कि अधिकारी बनाया जाए, संसार की चीजों को उसमें फंसने के लिए ये नहीं सुनाया जा रहा, आप लोग भी उसके अधिकारी हो और उसमें बहुत से अधिकारी हैं, क्वचित कोई होगा। हम तो ये जानते हैं सभी ये हमारा जड़ शरीर है, मैं ये नहीं जानता, इसलिए संसारिक चीजों से कुछ भी लाभ नहीं होगा, इसलिए इसके अधिकारी वो हैं जिनको भागवत की कथाओं में कुछ श्रद्धा है, वो लोग इसके अधिकारी और बाकी लोग अनाधिकारी। अधिकारी नौ मत सुनिया अनाधिकारी। तो मैंने कहा कि इसको मारेंगे अनाधिकारी, एक सुख पक्षी होकर के और सुन लिया। तो उन्होंने त्रिशूल उठाया और उड़ करके वो चले गए व्यास आश्रम बद्रिकाश्रम में। वहां पर व्यास जी अपनी पत्नी वेदिका से यही कथा भागवत कथा कह रहे थे। बस वो सुन रही थी, आश्चर्य चकित होकर के बस उनके मुख में प्रवेश कर गए और 12 वर्ष या 16 वर्ष कहते हैं वहां पेट में रहे। तो कैसे कृष्ण आए उनको निकाला और फिर उनको आदेश दिया, उनका नाम भी शुक रखा और भागवत को कहने के लिए उनको आदेश दिया। ये सब कथाएं आप लोग सुन चुके हैं। भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती है, एक होता है नित्य लीला, दूसरी होती है संसारी सृष्टि इत्यादि की लीला। ये दोनों लीलाएं ठीक है अपने अपने स्थान पर, किंतु हमको इस अनित्य लीलाओं से नित्य लीलाओं से ऊपर उठ करके भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करना पड़ेगा। कृष्ण का बाल्य चरित्र जहां से आरंभ हुआ है वहां से वो सब जितनी है नित्य लीलाएं, उसमें कंस मरण है, असुरों का मरना है, ये सब कुछ कुछ उसमें अनित्य लीलाओं का उसमें कुछ कुछ थोड़ा सा प्रवेश है, किंतु उसका भी बोलो वैकुंठ धाम में कुछ न कुछ जरूर भाव है। यहाँ पर कंस की मूर्ति होती है, वहां पर कंस का केवल भाव होता है, नहीं तो लीला नहीं हो सकती है। इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझना चाहिए इस तरह से। और दूसरी होता है सृष्टि, कैसे सृष्टि होता है ये प्राकृत, और कैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के द्वारा इसको पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी इसको ध्वंस करते हैं और कैसे उनका कल्याण करते हैं, इस सब कथाओं का ये दूसरे अध्याय दूसरे स्कंद में इसका वर्णन होगा, आप लोग सुनेंगे। ये सब है भूमिका, हमारे हृदय रूपी प्लेटफॉर्म को संस्कार करना है। ये सब नहीं समझने से तीसरा स्कंद नहीं समझ में आएगा, तीसरा स्कंद यदि नहीं पढ़ेंगे तो चौथा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा तो पांचवा नहीं आएगा। जिसने प्रथम सीढ़ी पर ही पैर नहीं दिया वो अंतिम सीढ़ी पर कैसे पैर दे सकता है। इसलिए नौ स्कंद को अच्छी तरह से समझो तो दशम को समझ सकते हो, अन्यथा नहीं समझ सकते। और दशम के हो जाने के बाद में कैसे हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं, ये एकादश और द्वादश में ये सब चीजें रखलाई गई है। धीरे धीरे हम लोग इसका वर्णन करेंगे। अब कथा आरंभ हो रही है, आप लोग सुनो।
बहुत प्रणाम देव,
आप लोगों ने सुना कर्दम जी का और देवती और कपिल देव जी का आपने संवाद, उन्होंने उसमें बताया उन्हों के जन्म और मरण का जो दुख है अभी हमें स्मरण नहीं हो रहा। बहुत ही कष्ट होता है जन्म में और मरण में, भगवान ने इसको अपनी माया के ऐसे भुला दिया है, यदि वो याद रहती तो कोई भी जन्म लेना नहीं चाहता। उन्होंने बताया कि गर्भ में कैसे जीव आता है माता पिता के संपर्क, पहले तो जीवात्मा जो मर जाती है वो तो आकाश में चली जाती है, बादलों के मेघों के से जो पानी बरसता है उसके साथ में फिर दुनिया, कैसे वृक्षों में मनुष्यों में वो सब जाता है, रस के साथ वो प्रवेश करता है, मनुष्य कुछ खाता है, स्त्रियां खाती है, पुरुष खाता है, जानवरों के भी पशुओं के पक्षों को भी जोड़े बांधे सब खाते हैं, और परस्पर मिलने के बाद वो कैसे हृदय में पहुंचता है, किस प्रकार से कितने दिनों में वो पूरा होता है, 9-10 महीने के बाद में तब वो एकदम पी रक्त और यह सब में सम जाता है, एकदम उसे बांध देते हैं और उसमें वो सांस लेने पाता है, कीड़े काटते हैं, माता को भी तरह तरह की कटु चीजों को खाती है, उसको वो भोग करता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इस नर से हमको निकाल, सभी जीवों के लिए ऐसा हुआ है। उसमें कोई कोई सौभाग्यवान जीव जब अत्यंत
उनकी आराधना करता है, उस समय प्रार्थना करता है तो भगवान उनको क्षण मात्र के लिए दर्शन, वो पाता है कि प्रभु इस बात को इस नर्क से निकालिए, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, जीवन भर भजन करूंगा। अच्छी ठीक है, याद रखना। इसके बाद उसका जन्म होता है, जन्म होते ही मैया की गोदी में आया, पूर्व जन्म की बातें तो याद रखनी है, होता है। इसके बाद में बहन के और सब माताओं की गोदी में जाकर के उचिल को भूल जाता है और फिर इस प्रकार से जीवन आरंभ करता है। बाल्य चला जाता है, बाल्यकाल चला गया खेलने में, करीब करीब 25 वर्ष तक उसको अपने किसी बात के लिए शिक्षा काम में लगी। 25 वर्ष तक उसने शिक्षा इत्यादि ग्रहण किया और इसके बाद में फिर विवाह शादी करके फिर संसार में भक्त हो जाता है। 50 वर्ष या बाद में आयु फलने लगती है, कुछ भी सुख नहीं मिला। 50 वर्ष में या 100 वर्ष की यदि आयु रखी जाए, उसमें से 50 वर्ष सोने में चला गया, बचपन में चला गया और जवन काल तक ये खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में ये 25 वर्ष, तो ये 20 वर्ष ही मान लिया के रख दिया है। और तक जन वृद्धावस्था में 80 से लेकर के 100 वर्ष, वो 20 40 और 50 90 वर्ष ये चला गया। और जो 10 वर्ष 50 में विवाह शादी करने में, बच्चों को पालन पोषण करने में, खाद इत्यादि बनाने में उसके लग गए, भगवान का भजन कब किया और फिर वह सब कुछ भूल करके फिर उसी नरक में चला जाता है। इसलिए शिक्षा देते हैं कपिलदेव जी माँ भैया को, भैया ये सबसे ऊपर होकर के भगवान के भजन में लगाओ। ये संसार ऊपर से दिखता है बड़ा सुहावना, किंतु सुहावना नहीं है, इसके भीतर में आग जल रही है। सभी अनुभव करते हैं, माता पिता दुख हो जाते हैं तो समझते हैं कि ये संसार क्या है, किंतु अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम भगवान का भजन करो। सिनेमा जाएंगे, बायोस्कोप में जाएंगे, गंदे उनके विचार होंगे, सब कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। और यदि भगवान की कथा सुनने के लिए आया, अरे इसका तो जीव बिगड़ गया, साबुन काटन करने लगा, क्या करने लगी, मतलब लोग यहाँ तक की समाज के कुत्ते भी उसके पीछे लग जाएंगे, अरे तू कहाँ जा रहा है। भगवान का भजन समझते हैं, जैसे हमने सारा जीवन दुख किया उसी तरह से ये भी दुख भोगे, इसीलिए फिर उसकी शादी इत्यादि करा करके संसार में रमा करके और मरते समय यही सब देख सुन करके फिर वो जन्म मरण के चक्कर में। इसलिए हमारे इन्होंने कपिल देव जी ने जो दुख माता को बताया है, मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है भगवान का भजन। इस कर्तव्य से यदि हो गया विमुख हो गया, फिर उसे कोटि कोटि जन्मों तक उसको संसार में घूमना पड़ेगा। एक भिखारी था, भिक्षा मांगने के लिए चला, किसी नगर में गया, एक तरह का ढूंढ रहा था कि इसमें जाएंगे राधे राधे कहेंगे कुछ भिक्षा मिल जाए। तो वो प्रवेश जब किया तो उसकी चार दीवारी 84 लाख मील की थी, उसमें प्रवेश कर गया। एक ही दरवाजा 3.5 हाथ ऊंचा और 1 हाथ 8 हाथ तो बस इतना है, बस उसमें प्रवेश कर गया। हाथ में लटकिया थी, अंधा व्यक्ति दीवार को पकड़ करके चल रहा, भिक्षा दे भिक्षा राधे राधे करता हुआ या कोई और दूसरा भिक्षा भिक्षा करता हुआ चल रहा था। चलते चलते कोई आदमी नहीं मिला, विचार मानते 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 84 लाख वर्ष बीत गए। कल्पना करो जैसे इतनी उम्र थी उसकी, एक रूप अपना था। जब फिर घूमता 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 सोचा कि कहां में फंस गया, अब दरवाजा मिले पीछे निकल जाऊं, दरवाजा मिल भी नहीं गया। अंत में लटकिया देखते देखते जब दरवाजा निकट में आ गया तो उसके शरीर में कुछ खुजला, जिस हाथ को वो दीवार पकड़ करके चल रहा था और एक हाथ से लठिया लिए बैठा, उसने एक हाथ में लठिया लेकर के दूसरे हाथ से जो दीवार पर रखा था वो खुजलाने लगा और चलता रहा। जी इतने वर्षों में यदि वो दरवाजा नहीं आया तो अभी थोड़े आ जाएगा, बस खुजलाते खुजलाते और दरवाजा पार हो गया
और फिर वही निगाह
और फिर उसको 84 लाख वर्ष घूमना पड़ेगा तब वो दरवाजा मिलेगा। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म से पार होने के लिए भवसागर से पार होने के लिए ये मनुष्य का जन्म दरवाजा है। इस मनुष्य के दरवाजे को पा करके ये संसार के ये खुजराहट को मिटाने के लिए यदि इसी में रह गए तो वो दरवाजा फिर पार हो जाएगा, फिर 84 लाख जन्म को घूमना पड़ेगा। इसलिए सावधान हुई ये जन्म केवल मात्र भगवान का भजन करने के लिए है और किसी काम के लिए। जो भजन करता है उसको खूब या तभी उसको उत्साह दीजिए और अपने भी भगवान का भजन। चोट के व्यक्ति करने में परिश्रम लगता है किंतु भगवान के भजन में क्या परिश्रम है? खाओ पियो भगवान का नाम करो, रात में करो दिन में करो जैसे तैसे करो, नहीं मिलता है तो तटी छुटते समय भी भगवान का नाम करो रात में दिन में जिस अवस्था में है। पैसा लगता नहीं कुछ भी नहीं लगता, आप लोग एकत्रित हैं यहाँ पर हर कथा में कौन सा पैसा लग रहा है? एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह से भगवान के नाम में भगवान के भजन में कोई भी प्रयोजन नहीं। हे प्रभु मैं आपका हूँ मैं आपकी हूँ बस ये कहने में क्या परिश्रम लगता है? सिर यदि झुका दिया भगवान के सामने इसमें क्या परिश्रम लगता है? इसमें भक्ति में कोई भी कष्ट नहीं है। झूठ बोलने में चिंता करनी पड़ती है कि मैं क्या कहूँ या फिर फंसने जाऊं, किंतु भगवान के नाम ले सकता हूँ इसे भगवान की भक्ति बड़ी सुलभ है, सहज है, सरल है, बिना परिश्रम के हो जाती है। इसलिए मनुष्य जन्म में ही होगा, देव लोक में भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं। इसलिए बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, उसमें भी इंद्रियां सब ठीक हैं, आंखों से देखते हैं, पैर से चलते हैं, नाक से करते हैं और इस शरीर में शक्ति है। शत्रुओं का कर्म हो गया, मथुरा में हम लोग जन्म लिया या कहीं दूसरे से दूसरी जगह से विवाहित होकर के यहाँ आ गए या आ गए नौकरी करने के लिए यहाँ आ गए मथुरा में वृंदावन में आप लोग आए और इसमें भी जन्म पा करके शत्रुओं का कर्म भी हो गया। यदि मनुष्य जन्म में आकर के भगवान का दर्शन करके कर देंगे तो आपको सब तक बातचीत का है और माया की खाड़ी में यही कपिलदेव जी की कमा का ये सार है। इसलिए आप लोग भी ऐसे सोच करके भगवान का भजन करेंगे और सभी भवसागर से बात करेंगे।
हरे कृष्णा हरे
तृतीय स्कंध का समाप्त और चतुर्थ स्कंध का उदाहरण पर बताया गया ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि की, वो स्वयं ही दो भागों में विभक्त होकर के संभव मनु और शत्रुता के रूप में वो प्रकट हुई। उसके पहले और मैथुनी सृष्टि थी, मन से उन्होंने कहा और वो सृष्टि हुई जिसमें कि सनत समंदम सनत कुमार नारद जी अगस्त ऋषि वशिष्ठ जी ऐसे ऐसे सब लोग जन्म ग्रहण किए, किंतु उनसे सृष्टि मैथिली सृष्टि नहीं आरंभ। तब उन्होंने मनुष्य शत्रु ताकत में प्रकटित होकर और सृष्टि आरंभ करवाई। तपस्या करने के बाद उन लोगों ने इंद्रों की संतानें हैं। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति हुए, उनकी कितनी कन्याएं हुई, उन कन्याओं में से उन्होंने किसको किसके साथ में सबकी शादी भी की, यह सबका वर्णन है। सबसे छोटी जब उनकी लड़की थी उसकी शादी शंकर जी से, बहुत से तालिक उन्होंने चेता की थी जो ये शादी